जिसको आप अष्टान्निका बोलते हैं, इस समय चल रहा है और ऐसे कई पर्व कम अवधि वाले और अधिक अवधि वाले आए और चले गए। ये भी एक दिन पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद यानी कार्तिक पूर्णिमा के पश्चात जो मगसिर महीना आता है वह कुछ विशिष्ट तिथियों को लेकर आता है। दशमी की तिथि भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा कल्याणक की तिथि है और दूज की तिथि हमारे गुरु महाराज की आचार्य पदारोहण तिथि है। और सामान्य नियम तो यही है कि साधु संत वर्षायोग के पश्चात पूर्णिमा के बाद कहीं स्थानांतरित होते हैं, बाकी यदि चाहें तो पंचमी तक ठहरने के बाद कभी भी स्थान को छोड़ सकते हैं। वो पंचमी निकल चुकी है, तो देखिए एक वो दिन था जब यहां तैयारियां चल रही थी और एक ये दिन है कि जब मेला समाप्ति पर है। एक मेला भातकुली में भी लगेगा, खैर भविष्य का तो कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन आप लोगों की योजना जो है उसके अनुसार भातकुली में भी एक कार्यक्रम है और सुना है कि मुक्तागिरी में भी एक मेला है। ये सब मेले चल रहे हैं और संसार में अपना जो संयोग है ये भी एक प्रकार का मेला है। और मेले में कई दुकानें होती हैं, कई चीजें बिकती हैं और लोग दूर दूर से आकर के खरीदते भी हैं, कई मनोरंजन के साधन भी होते हैं। किसी चिंतक का कहना है कि दुनिया के सारे बाजार मनुष्य के मन को बहलाने के लिए सजे हुए हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी सबके भीतर न जाने क्यों एक प्रकार का असंतोष विद्यमान है। कल भी था, आज भी है और आगे न जाने कब तक बना रहेगा। कई साल बीत गए, बहुत पुरुषार्थ किया, कई प्रकार के प्रयत्न भी किए कि हृदय प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आज अंदर झांक कर जब देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तक तसल्ली नहीं हुई। अभी तक कुछ बाकी रह गया, और ये खालीपन, ये सूनापन कैसे दूर हो, इसकी पूर्ति के लिए संसारी प्राणी अलग अलग ढंग से बहुत कुछ करता है। विदेशों में उनकी अलग व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान में भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। हर प्राणी अपने असंतुष्ट मन को बहलाना चाहता है। कुत्ता भी जब असंतुष्ट होता है तो वह अपनी चेष्टाओं के द्वारा मनुष्य का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। वो अपने कान, अपनी पूंछ और अपने शरीर को इस प्रकार हिलाता है कि मनुष्य उसके ऊपर हाथ फेरने लग जाता है। इसी प्रकार जो दूसरे पालतू जानवर हैं, वे भी अपने अपने हिसाब से कुछ चाहते हैं। नौकर भी कुछ चाहता है, मालिक भी कुछ चाहता है, गरीब भी कुछ चाहता है और धनी भी कुछ चाहता है, रोगी व्यक्ति भी कुछ चाहता है और चिकित्सक भी कुछ चाहता है। लेकिन आज तक ये किसी की समझ में नहीं आया कि वो कुछ है क्या चीज। उसके पीछे सारी दुनिया पागल है, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन फिर भी ये नहीं पता कि वो है क्या चीज, जिसके अभाव में सब कुछ करते हुए भी सूनापन महसूस होता है। वो इंद्रियों का विषय तो नहीं है, लेकिन तू भी खाली बैठा हुआ मनुष्य क्या करे, टीवी ऑन करके या फिर कोई वीसीआर में कैसेट लगाकर मन बहलाना चाहता है। मन बहलता नहीं, थोड़ी देर के लिए उसमें लग जरूर जाता है, लेकिन जो आनंद आना चाहिए वो तो किसी प्रकार से आता नहीं दिखता। भोजन सामग्री का भी अधिकाधिक सेवन करते हुए वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती जिसको मैं नहीं जानता खुद कि वो है क्या चीज, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ चाहिए मुझे, वो मिल नहीं रहा। छोटा बालक सोचता है कि जब मैं बड़ा लड़का बनूंगा तब ऐसा ऐसा करूंगा और फिर माने एक कल्पना है उसकी भी दृष्टि में कि बड़ा बन करके मैं ऐसा ऐसा हो जाऊंगा। जब थोड़ा बड़ा लड़का बन जाता है तो फिर और आगे की सोचता है कि जब मैं काम धंधे पर लग जाऊंगा तब मैं ऐसा ऐसा करूंगा, फिर पैसा कमाने लग जाता है तो सोचता है कि शादी हो जाएगी तब मैं ऐसा ऐसा करूंगा, शादी हो जाती है तो फिर सोचता है कि वंश आगे बढ़ जाएगा तब मैं कुछ और करूंगा। आगे बढ़ जाता है वंश, बाल बच्चे हो जाते हैं, ये बड़े हो जाते पढ़ लिख जाते हैं, फिर सोचता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब अच्छे ढंग से जीवन जीऊंगा। यानी आगे की तैयारी में ही पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन जीवन क्या चीज है इस रहस्य को कोई नहीं समझ पाता। जैसे ये चौमासा निकल रहा है वैसे एक दिन जीवन भी निकल जाने वाला है। जब तक जीवन है तब तक अपने पास प्रकाश है, उस खोई हुई चीज को ढूंढने के लिए मरने के बाद क्या पता कौन कहां का मुसाफिर बन जाए। और उस असंतोष को दूर करने के लिए जब कहीं कोई मार्ग नजर नहीं आता, कोई उपाय नहीं समझ में आता, तब लोग सोचते हैं कि चलो प्रवचन में कुछ मिल जाए। तो इस आशा से लोग धर्म श्रवण के लिए भी आते हैं, कुछ बातें सुनने को मिल जाती है और बहुत से लोगों का मन भी उसमें लग जाता है। और फिर कुछ बातें सांसारिकता से हट करके होती है तो लगता है कि चलो इस बात को फिर अगले रविवार को और सुनेंगे। ऐसे कई विचार आते हैं मन में, लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ कि मेरे जीवन का रहस्य क्या है और जीने की कला क्या है। बड़े बड़े चिंतक हो गए, बहुत से दार्शनिक हो गए, जीने की कला के बारे में सबने कुछ न कुछ अपने विचार रखे और जिनेंद्र भगवान का तो उपकार इतना महान है कि उन्होंने केवल जीने की कला का उपदेश नहीं किंतु साथ साथ में मरने की कला, संलेखना का भी उपदेश दिया। ये है क्या चीज जीने की कला? एक एक समय में अपनी आयु निकलती जा रही है, घड़ी का कांटा सरकता है और यहां से आयु भी सरकती है, चाहे वो कांटा आपके सोते हुए सरक जाए या जागृत अवस्था में सरके। पर निकलता जाता है समय, जीवन का भी और घड़ी का भी। हाथों में सब लोग घड़ी रखते हैं लेकिन अंदर उसकी तरफ कोई रुझान नहीं है, वो घड़ी बाहर बाहर रहती है, अंदर का कोई हिसाब नहीं है ना। इतना पता है कि इतने बजे मुझे नाश्ता करना है, इतने बजे चाय पीनी है, इतने बजे अंथव या और कुछ करना है, इतने बजे दुकान खोलनी है, इतने बजे ये करना है, ये सब पता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने बजे मेरा डेरा उठ जाने वाला है, कितने मुहूर्त निकालते हैं लोग। गृह प्रवेश का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, दुकान खोलने का मुहूर्त, बही खाते का मुहूर्त और बाल बच्चों के नामकरण का मुहूर्त, ये सारे के सारे मुहूर्त निकाले जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि मरने का कौन सा मुहूर्त है। हंस के टाल मत देना इस बात को। समझने की बात है, सब कामों के तो मुहूर्त है लेकिन मौत का कौन सा मुहूर्त है? ऐसा भी सुनते हैं कि जो सदाचारी होते हैं, जो सत्य के उपासक होते हैं, उनको प्रायः अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होता है। पूर्वाभास यानी पहले से एहसास होता है पर इस सभा में अपन नहीं जानते किसी को एहसास है या नहीं। ये तो जानते हैं कि मौत सुनिश्चित है और अनिश्चित है, ये तो जानते हैं। यदि आपसे कोई कह दे कि रात को 9:15 बजे आपकी आयु पूर्ण होने वाली है, तो इतने घंटों का आप क्या करेंगे? पैसा कमाओगे? या फिर खूब मिठाइयां बनवाकर जल्दी जल्दी उसका लाभ उठा लोगे? या कोई और इंद्रिय सुख प्राप्त करने की चेष्टा करोगे? क्या करोगे? आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण ग्रंथ में लिखा है कि जब भी तुम्हें पाप करने की इच्छा हो, तत्काल अपने मन से कहना कि अगर इस समय मौत आ गई तो ये पाप कहां ले जाकर पटक देगा। देखो, आचार्य महाराज कभी कभी कुछ बहुत गहन चीज कह जाते हैं। क्या कहा? कि जब भी पाप करने की इच्छा हो तो अपने मन से कहना कि अगर मौत इसी वक्त आ गई तो ये पाप मुझे कहां ले जाकर पटक देगा। क्योंकि कर्मों का फल पक्षपात करना नहीं जानता। यदि अरबपति भी पाप करे तो देर नहीं लगती, वो मर करके किसी गोदाम में चूहा बन सकता है। उसके पैसे उसको बचा नहीं सकते। लेकिन न जाने क्यों पुण्य के उदय में अधिकांश लोगों के अंदर एक नशा सा चढ़ जाता है। जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, जैसे जैसे शक्ति और अधिकार बढ़ते हैं, वैसे वैसे मनुष्य पागल सा होने लग जाता है। वास्तव में क्या है ये सारा वैभव, ये सारा ठाट, ये अधिकार, ये संपत्ति? छाया के समान है, बादल की छाया के समान। अभी है और हवा आई और चली गई, पर अनित्यता पर दृष्टि नहीं जाती और सोचता है कि बस इतनी कमाई कर लो, इतनी कमाई कर लो। बहुत कमाई कर ली, जरूरत से ज्यादा कर ली। जरूरत कितनी थी? 2 बार भरपेट भोजन मिल जाता, रहने के लिए स्थान होता और सर्दी गर्मी के लिए वस्त्र वगैरह की व्यवस्था होती, इतना काफी था। लेकिन फिर भी जरूरत से ज्यादा लालसा इतनी बुरी वस्तु है। सारे पापों की जड़ लालसा है। सादा भोजन खा करके मनुष्य अपना पेट भर सकता है, लेकिन फिर भी वो पकौड़ी खाना क्यों पसंद करता है? मिठाइयां क्यों उसको पसंद आती है? उसकी लालसाएं पेट की मांग अलग है, लेकिन जो प्रवेश द्वार है ना, वहां एक पहरेदार बैठा है, आप जानते हैं ना। जिह्वा इंद्रिय रसना, पेट को मीठे कड़वे खट्टे आदि से कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस संतुलित आहार मिल जाए तो वो अपना काम करेगा, शरीर का संचालन होता रहेगा। लेकिन ये जो डोर कीपर है, डोर कीपर यानी पहरेदार जो द्वार पर बैठा है, वो बड़ा घूसखोर है। वो कहता है कि लाओ हमें कछु दो, वो कहता है कि खाना बाद में खा लेना, अभी तो मानक छंद, और न जाने क्या क्या। और इसी कारण संसारी प्राणी इंद्रियों का दास बनकर अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन को खो डालता है। अंत में जब बुढ़ापा आता है, तब डॉक्टरों की फीस चुकाते चुकाते जितनी कमाई की थी ना, वो निकल जाती है। क्योंकि भोग का परिणाम क्या, रोग, और रोग का निवारण क्या, योग। लेकिन योग की तरफ किसी का झुकाव नहीं है। और इन शरीर संबंधी रोगों की बात छोड़ो, योग संसार रूपी रोग को भी शांत करने में समर्थ है। लेकिन इस धरती पर योगी लोग गिने चुने हैं, भोगी बहुत हैं और उनसे भी ज्यादा रोगी हैं। जन्म जरा और मृत्यु रोग तो देवों को भी लगा हुआ है। जरा वहां पर थोड़ी कैंसिल हो जाती है, लेकिन जन्म और मरण तो सर्वत्र है। कई कथाएं भी लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, कई विकथाएं भी करते हैं, लेकिन तो भी जो चाहिए वो नहीं मिलता। वह असंतोष कैसे दूर हो, वह अंदर का सूनापन कैसे समाप्त हो, तो इसके लिए कहते हैं कि वास्तव में एक ही समाधान है, कोई दूसरा समाधान नहीं है। और वह समाधान है धर्म। कोई दूसरा समाधान नहीं है, एक ही समाधान है धर्म। सवेरे भीष्म पितामह के जीवन का सार आपने सुना था, जब पांडवों ने पूछा कि अब तो आपकी आयु पूर्ण होने को है, कुछ अपना अनुभव हमें दे जाइए, तो भीष्म पितामह ने एक बात कही थी, जो धर्म का नाश करता है उसका नाश हो जाता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अहिंसा सर्वोत्कृष्ट धर्म है, और चूंकि वह धर्म है इसलिए उसी की विजय है। बाकी सब चीजें समय पाकर के नष्ट हो जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, संस्कृतियां भी बदल जाती है, मनुष्य के रूप रंग बदल जाते हैं, बचपन के केश, बचपन का चेहरा आगे चल करके परिवर्तित हो जाता है। अब किसी वृद्ध व्यक्ति का आप चेहरा देखिए और अनुमान लगाइए कि बचपन में कैसा दिखता होगा, अनुमान लगाना मुश्किल है। ये सब परिवर्तन आते हैं, पुस्तकें बदल जाती हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, और यहां तक कि बड़ी बड़ी नगरियां भी बदल जाती है, कई जिले भी काल के गाल में समा जाते हैं। मोरबी नाम का जिला था ना गुजरात में, जब वह जबरदस्त समुद्री तूफान आया तब पता नहीं चला वो जिला कहां चला गया। बड़ी बड़ी भैंसे भी बिजली के तारों पर लटक गई, इतना भयंकर तूफान था। उसमें भी परिवर्तन आ गया, सब कुछ बदल गया। अभी जो भूकंप आया था ग्रीष्म काल में, उस भूकंप में कितनी हानि हुई। सेंट्रल भारत उसका केंद्र बना, जबलपुर पर उसका विशेष जोर रहा। तो परिवर्तन तो हर जगह होता है, हर वस्तु में होता है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा रहती है, बनी रहती है, उसको कोई बदल नहीं सका और न बदल सकता है। उस चीज का नाम है धर्म। लोग प्रयास जरूर करते हैं कि भाई कोई शॉर्टकट निकल आए, लेकिन शॉर्टकट निकल नहीं पाता। वो तो एक ही मार्ग है, समता। आचार्य श्री कहते हैं ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही दुख का मूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल, चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल, सब शास्त्रों का सार यह, समता बिन सब धूल। सब शास्त्रों का सार तो समता है, वो समता यदि प्राप्त हो जाए तो अंदर का असंतोष रवाना हो जाए। लेकिन समता कैसे प्राप्त हो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के अभाव में कोई चाहे कि भाई हमें समता मिल जाए, हमें सुख शांति मिल जाए। सुख तो सारी दुनिया चाहती है, लेकिन ये पता नहीं है कि सुख है क्या। माने जिसका परिचय भी नहीं है उसको सब चाह रहे हैं, ये कैसी विडंबना है। ठीक है, सुख चाहते हुए भी यदि सच्चे सुख की कामना हो तो एक नवीन पुरुषार्थ अपने जीवन में प्रकट हो सकता है, और ऐसी भावना भी इन्हें गिने हृदयों में आती है कि मैं अपने इस जीवन का कुछ सदुपयोग करूं। वैसे बाहरी दृष्टि से तो सदुपयोग बहुत से लोग अपने अपने ढंग से करते हैं, दूसरों की सेवा करना या फिर और भी कुछ करना, सामाजिक कार्यों में आगे रहना, बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। ये आज की स्थिति नहीं है, बहुत पुरानी स्थिति है। आप देखेंगे, आज भी देखना, कहीं भी ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो खुद बिगड़ा हुआ है लेकिन दूसरों को सुधारना चाहता है। कहीं भी मिल जाएगा आपको ऐसा व्यक्ति। पर जैन धर्म कहता है कि पहले सुधरो और फिर सुधारो। जो स्वयं डूबा हुआ है वह दूसरे डूबने वालों को क्या बचाएगा? इसलिए सबसे पहले माने ये शुरुआत जो है समता भाव तक पहुंचने की जो पहली कड़ी है वो है निज दोष दर्शन। बहुत देख लिए दूसरों के दोष, दूसरों के दोष देखना भी दोष है, लेकिन ये समझ में नहीं आ पाया आज तक, पर बहुत हो चुका। पड़ोसी के कितने दोष है अपन पूरी लिस्ट बना सकते हैं, और ससुराल वाले के कितने दोष है ये भी सब हिसाब लगा सकते हैं, किसमें कितने दोष है ये तो सब जाना जा सकता है। लेकिन मेरे दोषों की यदि सूची बनाई जाए तो न जाने कितने पन्ने भर जाएं, न जाने कितनी अलमारियां भर जाए। एक बार अपनी याददाश्त को परख करके बचपन से आज तक जितने अपराध आपको याद आ जाए लिख के देख लेना ईमानदारी से, क्योंकि यहां तो ईमानदारी तो पहली चीज है, नहीं तो फिर बेईमान। मैं गाली नहीं देता था लेकिन देनी पड़ी। वाह, ऐसे कई उपाय लोग निकाल लेते हैं, लेकिन ईमानदारी से यदि आप हिसाब लगाकर देखोगे कई पाप ऐसे हैं आपके जो किसी ने नहीं देखे, सिर्फ आप जानते हो, लेकिन उनका प्रायश्चित किए बिना मोक्ष नहीं मिलने वाला। मोक्ष इतनी सस्ती वस्तु नहीं है जितना लोग सोच बैठे हैं कि हम बस हाथ जोड़ लेंगे भगवान के सामने, या फिर धर्म प्रवचन सुन लेंगे, या थोड़ा बहुत और कोई क्रिया कर लेंगे तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये तो वो मार्ग है जहां पर अपने प्रति कठोर बनना पड़ता है और दूसरों के प्रति बिल्कुल कोमल। और अभी क्या चल रही है प्रक्रिया? विपरीत, अपने प्रति बिल्कुल कठोर बना हुआ है संसारी प्राणी, अपने प्रति बिल्कुल कोमल बना हुआ है, और कोमल बनने के कारण कठोर बना हुआ है। और दूसरों के प्रति कठोर, स्वार्थ हमेशा अपनी सुविधा देखता है, लेकिन करुणा दूसरों के सुख दुख का भी ध्यान रखती है। पर वो करुणा कहां है? अपनी सीमित दुनिया में अपने स्वार्थों में जकड़ा हुआ मनुष्य कहां देख पाता है कि कितने लोग तड़प रहे हैं? फुर्सत कहां है? भूकंप आया, अपने घर को कुछ नहीं हुआ, बस अच्छा रहा। और कोई उपद्रव हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अपने परिवार में किसी का कुछ ना हो जाए, ये पहले चिंता रहती है लोगों को। संसार में उपद्रव ना हो ऐसी भावना कितने लोगों में है? उपद्रव से लोग इसलिए डरते हैं कि हम संकट में ना पड़ जाए, दूसरे पड़े से पड़े, और पड़ोसी अगर पड़ जाए तो और अच्छा है। जिससे दुश्मनी है उसका सब अहित चाहते हैं, जबकि दुश्मन क्या वस्तु है? न कोई दोस्त है न दुश्मन है। अपने अंदर जब तक दुश्मनी का भाव है तब तक ये सारे विभाग है। दुश्मनी सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ में आ रही है बात? कुछ या फिर ऐसी ऐसी चर्चा में पूरा प्रवचन निकल गया और बोर हो रहे हो आप लोग। तो निज दोष दर्शन कल्याण मार्ग की पहली सीढ़ी है। मेरे अंदर कितनी त्रुटियां, कितने दोष हैं। दूसरों की निंदा तो सबसे सरल है, अपनी निंदा करके देखो। मैं कितना दोषी हूं, मैं क्या क्या सोचता हूं दिन भर में, उसका एक बार हिसाब लगा के देखो। बचपन से आज तक जो पाप किए सो किए, लेकिन एक दिन में मेरे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं उसका हिसाब लगा के देखो, पता चल जाए कितने महात्मा हो। एक ही दिन में निर्णय हो जाएगा, और इसके ऊपर एक और समस्या है कि व्यक्ति की अपनी छवि कुछ और होती है और दूसरों को दिखाता कुछ और है। उसका स्वयं का व्यक्तित्व अलग है और दूसरों के सामने जो शो कर रहा है वो कुछ और है। घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, मंदिर में कुछ और है, यहां प्रवचन सभा में कुछ और है, ऑफिस में कुछ और है, दुकान पर कुछ और है, अमरावती में कुछ और है और अमरावती के बाहर कुछ और है। अच्छे लोगों के बीच में कुछ और है और क्लब्स में या और दूसरे स्थानों पर जाकर कुछ और बन जाता है। ये क्या नाटक है। और इतना सब करने के बाद सोचता है कि थोड़ा बहुत धर्म कर लिया मैंने तो अब तो मेरा बेड़ा अवश्य पार हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाता है। बात गलत नहीं है, लेकिन नाम लेने लायक बनकर भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है। तोता रटंत से या फिर मुंह में राम और बगल में कुछ और करने से बेड़ा पार कैसे हो सकता है। ये सब मास्क माने मुखौटे हैं मनुष्य के मुख पर लगे हुए। आचार्य श्री के सामने व्यक्ति कुछ और बन जाता है और माताजी लोगों के सामने कुछ और बन जाता है, नेताओं के सामने कुछ और बन जाता है और इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स ऑफिसर के सामने कुछ और बन जाता है। बोली लगती है तब ज्यादा दान देता है और जहां बोलियां नहीं लगती वहां पर 501 हमारी तरफ से लिखवा देना, बोलियां लगे तो फिर 50,000 या 5,00,000 तक के चली जाए भावना। ये क्या है। दान तो परिग्रह का प्रायश्चित था, उस दान में भी नाम कमाने की भावना। ये कैसा कलिकाल। माने किसी को कोई दंड मिले तो क्या वो अखबार में छापता है या अपना नाम प्रसारित करता है कि मुझे दंड मिला। तो गृहस्थ अवस्था में दान का प्रावधान क्यों रखा कि जो परिग्रह इकट्ठा किया जाता है उसमें बड़ा पाप कमाना पड़ता है और उस पाप का छुटकारा कैसे हो। दान के माध्यम से अच्छे कार्यों में अपने धन को लगाओ। ये तो नीति है भारतीय संस्कृति में कि जो अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा दान में नहीं लगाता उसका घर मरघट के समान है। माने वहां कोई जीने का औचित्य नहीं है, वहां सिर्फ जन्म और मरण चलता रहता है। तो अपने दोषों को देखने की कला अगर आ जाए तो फिर आपको यह कहना नहीं पड़ेगा कि भाई अब सुधरो। अगर आपके मुंह पर कोई चीज लग जाए, माने भोजन कर लिया आपने, थोड़ी सी दाल लग गई आपके गाल में और आप घर से बाहर निकल रहे थे, अचानक दर्पण की तरफ दृष्टि पड़ी और देखा कि ये क्या है। देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है, कोई कहने की बात ही नहीं है, उसको तुरंत साफ कर दिया जाता है। इसी प्रकार एक बार महापुरुषों के जीवन रूपी दर्पण में अपना जीवन देख लो कि उनका जीवन कहां और मैं कहां, तब समझ में आ जाएगा कि कितनी कालिमा लगी हुई है चेहरे पर, और उसको धोने की भावना भी होगी। कोई अपने चेहरे को खराब नहीं देखना चाहता, 70-80 साल की उम्र भी हो जाए तो भी दर्पण के बिना लोगों का काम थोड़ी निकलता, दर्पण का बराबर इस्तेमाल करते हैं वे भी वृद्धावस्था में, भले बाल भी एकदम साफ हो जाए तो भी एक आध बार देख लेते हैं कि अब कैसे लग रहे हैं। तो ये तो ऊपरी चेहरे की बात, अंदर की तरफ देखिए कितनी सफाई आवश्यक है और समय कितना बचा है इस पर भी विचार करिए। कोई ठिकाना नहीं किसका कब टिकट कट जाए, कौन जानता है किसका बल्ब कब फ्यूज हो जाए। कभी कभी नए बल्ब जल्दी फ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी पुराने बल्ब लंबे समय तक चल जाते हैं। इसलिए नए पुराने का सवाल नहीं है, मौत ये नहीं देखती कि नया है या पुराना है। मौत का एक नाम समवर्ती है शास्त्रों में, समान बर्ताव करती है मौत सबके प्रति, चाहे धनी हो निर्धन हो, जैन हो जैनेतर हो, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, मौत तो बिल्कुल समता रखती सबके प्रति। तो उसके पहले अपने जीवन को संवारने का जो मौका मिला आपको, उस मौके का फायदा उठा लेना बुद्धिमानी है, वरना तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचतन, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम। केवलिपण तु धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहुलो गुत्तमा केवलिपण तु धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पौवज्जामि अरिहंत शरणं पौवज्जामि सिद्ध शरणं पौवज्जामि साहु शरणं पौवज्जामि केवलिपण तु धम्मो शरणं पौवज्जामि परम पूजनीय पंच परमेष्ठी भगवंतों की जिनवाणी माता की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की।